देशघाती प्रकृति में आता है, स्पष्ट करें। प्रश्न पहले समझना कि जैसे हमने क्षायिक भाव में देखा था कि जो सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के प्रकृतियों का क्षय होगा तो क्षायिक भाव होगा, हमने देखा था। जैसे ज्ञानावरण का क्षायिक ज्ञान तब होगा तो सर्वघाती से केवल ज्ञानावरण और देशघाती से अन्य जो चार ज्ञानावरण है उनका क्षय होगा तो क्षायिक ज्ञान प्रकट होगा। बात बराबर है? तो क्या ज्ञानावरण में औपशमिक भाव होगा? क्या नहीं होगा? क्योंकि हमने देखा था मोहिनी में होता। अब मान लो ज्ञानावरण का औपशम हो जाता तो क्या होता? मैंने बाय चांस एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञानावरण और अन्य ज्ञानावरण सभी ज्ञानावरण का उपशम हो जाता तो क्या होता? केवल ज्ञान प्रकट हो जाता एक अंतर्मुहूर्त के लिए और वो अंतर्मुहूर्त में सब जान जाता और अभी वितराग हुआ नहीं है और सब जान लिया कौन मेरा शत्रु है, कौन मित्र है, पूर्व भोग के हमारे कौन कौन से रिलेटिव है। तो अभी इस भोग का थोड़ा सा ज्ञान है तो इतना राजद्वेष चलता है और अनंत भोगों का ज्ञान हो जाए तो राजद्वेष कितना हो जाए। तो ये तो उपशम भाव तो ज्ञानावरण में है नहीं, वो बात है। अब किस में होता है? तो मोहिनी में होता है। अब हम मोहिनी की दर्शन मोहिनी प्रकृति देखें तो उसमें सर्वघाती और देशघाती कौन कौन से है? तो सर्वघाती मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व है और देशघाती सम्यक प्रकृति है। तो अकेले सर्वघाती का उपशम हो जाए और देशघाती का उदय हो तो उसको तो हम कहेंगे क्षोपशम सम्यक। परंतु जब सर्वघाती और देशघाती दोनों का ही उपशम हो जाएगा, उपशम होना है कोई भी देशघाती हो या सर्वघाती, किसी का भी उदय न होना, कर्मांतर पड़े रहना दबे हुए, उसको कहते हैं उपशम। तो अनादि जो मिथ्या दृष्टि है उसके पास सत्ता में ही मिथ्या तो कर्म ही, तो उसका जब उपशम हो जाएगा तो वहां औपशमिक भाव प्रकट होगा, बराबर। और जो शादी वाला है, अभी शादी अनादि क्या होता है उसकी चर्चा आने वाली, तो शादी मिथ्या दृष्टि का अर्थ होता है एक बार सम्यक तो होकर फिर जो मिथ्या तो में आया है तो उसके मिथ्या तो में से तीन टुकड़े बनते, तीन प्रकृतियां बनती, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब ऐसा जीव जब दोबारा प्रथम ऑप्शन सम्यक तो प्रकट करेगा यानी दोबारा ऑप्शन सम्यक तो प्रकट करेगा तो तीनों ही प्रकृतियों का उपशम होता है यानी सर्वघाती और देशघाती दोनों का उपशम होगा तभी उपशम भाव प्रकट होगा। यानी जैसे क्षायिक में सर्वघाती देशघाती दोनों का ही क्षय होता है वैसे औपशमिक में भी देशघाती सर्वघाती दोनों का ही उपशम होगा तब औपशमिक भाव प्रकट होगा। कल में अब हम आगे बढ़ेंगे। लब्धि के प्रकरण में हमने देखा था कि लब्धि नाम अलग अलग अर्थों में शास्त्र में आता है। लब्धि जो शब्द है वो अलग अलग अर्थ में आता है और वो कहाँ कहाँ आता है उसकी भी बात हमने की थी कि रिद्धि में जो विशेष तप के बल से जो रिद्धि होती है उसको भी लब्धि कहने में आता है। अब यहाँ हमारा विषय तो पंच लब्धि का है, तो जो प्रथमोक्षम सम्यक तो होने के पहले ये पांच लब्धि जो नियम से होती ही है उसकी अब यहाँ से हम चर्चा करें। ये यहाँ से अपना विषय प्रारंभ होता है, तो वो पांच लब्धि के नाम मैं भी बोलूंगी, मेरे पास आप रिपीट करना। हिंदी में पेज 57 पर लिखे है और 54 में है गुजराती में। देखो, क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। दोबारा हम फिर पढ़ेंगे, क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। इसी क्रम से ये होगी, पहले क्षोक्षम लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। यानी ये पहले पांच लब्धि होकर पांचवी करण लब्धि के पश्चात प्रथमोक्षम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अब इसी को अन्य शब्दों में अन्य ग्रंथों में भी लिखा है, तो सागर धर्मामृत नाम का जो ग्रंथ है उसमें तो सादी भाषा में लिखा है, परंतु कहना तो यही चाहते। हाँ। तो ये जो सागर धर्मामृत ने बताया है उसमें क्या लिखा है, संविध्व, यानी ये जो सूक्ष्म लब्धि में जो हम देखने जा रहे हैं, संविध्व ने संगी पंचेन्द्रियपना प्राप्त होना, या तो बिल्कुल स्थूल उसकी परिभाषा की है, तो संगीत्व शुद्धि, शुद्धि यानी ये विशेष मंद दशा रूप जो भाव है यहाँ उसको शुद्धि कहा है। देशना यानी वो देशना एक्चुअली क्या है किसे कहना उसकी बात हम कहेंगे, जो ऊपर हमने देशना लब्धि कहा वहां यहाँ देशना कहा है। कर्म हानि यानी कर्मों की हानि होना, यानी सत्ता में पड़े पड़े कर्मों में जो कुछ बातें बनती है वो कौन सी बातें बनती है उसकी बात हम देखेंगे, ये कर्म हानि में आता है। और अस्त मिथ्यात्व यानी मिथ्यात्व का अस्त होता है, वो उदय में नहीं आता तो उसको अस्त मिथ्यात्व कहते हैं। अब नियमसार ग्रंथ की तात्पर्य की टीका में भी पांच लब्धि के नाम लिखे, वो नाम इस प्रकार है, काल लब्धि, करण लब्धि, उपदेश लब्धि, उपशम लब्धि और प्रायोगिता लब्धि। अलग तरीके से उसको बताया, पहले तो हमने 1, 2, 3, 4, 5 बताए, अब उल्टा बताया। समय को प्राप्त होता है तो काल लब्धि से प्राप्त होता है ना, जिस समय प्राप्त होगा उसी समय में होगा, उसके पहले क्या होगा तो उसके पहले करण लब्धि नियम से होगी, करण लब्धि होने के पहले क्या होगा तो देशना लब्धि नियम से होगी, उसके पहले क्या होता है उपशम यानी यहाँ प्रशम लेना, कर्मों का उपशम वाला उपशम नहीं, उपशम यानी प्रशम भाव, मंद कषाय रूप भाव, उसको यहाँ उपशम कहा है, वो उपशम लब्धि। और उसके पहले प्रायोगिक लब्धि यानी जीव की विशेष योग्यता, शब्द अलग है उसी शब्द के अलग अलग जो अर्थ है उसके संदर्भ में ये बातें हुई थी। अब जयपुर में अभी अभी हमने क्लास चलाया था तो किसी भाई ने पूछा कि ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों, क्योंकि ऊपर तो हमने क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि इस क्रम से देखा और यहाँ कुछ भी पहले पीछे ऐसा कुछ भी है, तुमने पहले के पहले में पहले आप एक काम करना, नियम सार में लिखा है तो कहाँ ये लिखा है वो ढूंढ कर ले आ, क्योंकि प्रश्न पूछने वाले की एक जवाबदारी है कि उसको वो प्रश्न पूछता है और तत्काल उत्तर चाहता है, जैसे कंप्यूटर पे बटन दबाए और चाहता है तो उसके लिए उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो ढूंढ कर निकाले, परंतु ऐसे किसी पर कोई आपस नहीं आ रही, इसलिए पहले इन्होंने ये ढूंढ कर बता दिया मुझे कहाँ है। नियमसार में कहाँ ये बात आई है तो 156 गाथा दरेक के बहुत परिचय की। जब तो पूनमचंद जी आते हैं तो वो गाथा लेते हैं। हाँ, ये सब समझिए, नाना जीवा नाना का 156 नंबर की जो गाथा है, उनके नाना जीवा नाना कमुआ और क्या, उनके नाना विहम हवे लब्धि, यानी उनके लब्धि भी नाना प्रकार के थे। जीव नाना है, नाना यानी अनेक, जीव अनेक प्रकार के हैं, उनके कर्म भी अनेक प्रकार के हैं और उनको लब्धि भी अनेक प्रकार की होती है। तो ये तो गाथा ही, और उसके जो टीका है उसकी, उसमें ये बात ये है, उसमें लिखा है जीव नाना प्रकार के, नाना प्रकार के कुछ मुक्त है, कुछ संसारी है, कुछ भोग्य है, कुछ अभोग्य, कुछ स्थावर है, कोई प्रत है, कोई के लिए, कोई दो लिए, कोई तीन लिए आदि आदि, कोई भोग्य है, कोई अभोग्य है। अभी भोग्य तो अभोग्य क्या है इसकी चर्चाएंगे। और उनमें अभी जो हमने कर्म देखे, किसी में अधिक अनुभव है, किसी में कम अनुभव है ना, कोई कोई प्रकृति वाले हैं, कोई अन्य अन्य प्रकृति वाले हैं, किसी की स्थिति अधिक है, किसी की कम है, तो कर्म भी नाना प्रकार के, यानी असंख्यात लोग प्रमाण से अलग अलग प्रकार के कर्म पाए जाते हैं। और जीवों को सुखादि की प्राप्ति रूप जो रद्दी है उसमें काल करण उपदेश उपशम और प्रायिकता रूप वेदों के कारण लब्धि भी 5 प्रकार की है। अभी जो हमने यहाँ पुस्तक में पढ़ी थे कि काल लब्धि, करण लब्धि, उपदेश लब्धि, उपशम लब्धि और प्रायिकता रूप लब्धि, इसलिए परमार्थ के जानने वालों को स्रोत में और पड़ोस में उनके साथ बात करनी होगी। उसका विषय अलग है अभी, ये तो हम कहाँ ये शब्द आए हैं शास्त्र में और किस अर्थ में आए हैं उसकी हमने यहाँ चर्चा कर। यानी इन 5 लब्धि पूर्वक ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। जब जब यहाँ प्रथमोक्षम सम्यक्त्व लेना, अब जब जब हम सम्यक्त्व कहेंगे यहाँ की बात, तो प्रथमोक्षम सम्यक्त्व की बात होती है। क्षायिक सम्यक्त्व और चौक्षम सम्यक्त्व के लिए कोई अन्य नियम उसमें लागू होते हैं, और यहाँ जब हम बात कर रहे हैं कि ये 5 लब्धि होती ही है और उसके पश्चात ही सम्यक्त्व होता है, तो यहाँ तो प्रथमोक्षम सम्यक्त्व की बात लेना है। तो इन 5 लब्धि पूर्वक प्रथमोक्षम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। लब्धि का स्वरूप देखने से पहले प्रथमोक्षम सम्यक्त्व का अर्थ समझेंगे, क्योंकि हमें मालूम है प्रथमोक्षम किसे कहना। तो पहली बार होता है वो प्रथमोक्षम, ऐसा है क्या, दूसरी बार होता है उसको क्या कहेंगे, द्वितीयोक्षम। तो एक बार हो गया फिर दूसरी बार होने का क्या सवाल है, एक बार सम्यक्त होगा तो दूसरी बार सम्यक्त तो कब कैसे हो सकता है, तो मिथ्यात्व में आया तो ही दूसरी बार होगा, तो दूसरी बार होगा तो किस विधि से फिर उसका होगा। तो इसमें प्रथमोक्षम ऐसा शब्द आया है, इसका अर्थ होता है किसी कर्म का उपशम होता है। तो जब जब विशिष्ट, अभी कौन से कर्मों का उपशम होता है उसकी बात हम बाद में करें, जब जब कर्मों का उपशम होकर, अब उपशम होता है नहीं क्या होता है उसकी भी चर्चा करें, जब जब कर्मों का उपशम होकर जीव को सम्यक्त्व प्राप्त होता है। कहां से, मिथ्यात्व अवस्था में सम्यक्त्व प्राप्त होता है, कौन से विधि से, कर्मों का उपशम होकर, तब तब हम उसको प्रथमोक्षम सम्यक्त्व कहेंगे। दोबारा जीव मिथ्यात्व में आ गया और फिर उसने कर्मों का उपशम करके सम्यक्त्व प्राप्त किया, तब भी उसको हम क्या कहेंगे, प्रथमोक्षम। अब उसको द्वितीयोक्षम तृतीयोक्षम ऐसा नहीं कहेंगे, है ना, जब जब जीव मिथ्यात्व में से विशिष्ट कर्मों का उपशम करके सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा, तब तब हम उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहेंगे, क्योंकि शास्त्र में द्वितीयोपशम सम्यक्त्व ऐसा भी शब्द आता है। परंतु वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व मिथ्यात्व में से नहीं होता। जो क्षोक्षम समय दृष्टि है, सात्विक अनुष्ठान वाला है, ऐसे मुनिराज जब श्रेणी चढ़ते हैं, आठवां नौवां दसवां ऐसे ऊपर के गुणस्थानों में जाएंगे, उससे पूर्व उपशम श्रेणी चढ़ने के पूर्व जो क्षोक्षम समय दृष्टि जीव है, वो क्षोक्षम सम्यक्त्व में से ही उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा। यानी सम्यक्त्व है और सम्यक्त्व ही रहेगा, परंतु पहले क्षोक्षम समय दृष्टि का अब औक्षमिक किया उसने, उपशम समय दृष्टि हुआ, तब उसको हम द्वितीय उपशम कहते हैं। हमारी बात कौन सी चल रही है? प्रथमोपशम की। तो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि कौन होगा? तो जो मिथ्यात्व अवस्था में सही सम्यक को प्राप्त करता है। किस विधि से करता है? तो विशिष्ट कर्मों का उपशम करके। तो अब इसको हम पढ़ेंगे, देख फिर से पढ़ते हैं। पांच लब्धि पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। लब्धि का स्वरूप देखने के पहले प्रथमोपशम सम्यक्त्व का अर्थ समझेंगे। तो इसमें दो शब्द है, प्रथमोपशम और सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व शब्द से तो तुम भली भांति परिचित हो। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं सूत्र का अर्थ हमने पहले विस्तार से देखा है। ये तो जैन तत्व परिचय पुस्तक में इसने बहुत इसकी चर्चा की है, तो इसलिए जो जो विषय पहले हो चुके हैं उसका यहाँ विस्तार नहीं किया। अब अनादि मिथ्या दृष्टि जी, अब अनादि किसको कहना और सादि किसको कहना? तो ये शब्द कैसा बना? अनादि अन आदि, अनादि यानी जिसको शुरुआत आदि नहीं है उसको कहेंगे अनादि। तो इन्हें अनादि काल से जिसका मिथ्या तो चला आ रहा है, जिसने कभी भी सम्यक को प्राप्त नहीं किया है अभी तक, उसको कहेंगे अनादि मिथ्या दृष्टि। और सादी मिथ्या दृष्टि ने क्या? स प्लस आदि, यानी जिसके मिथ्यात्व को आदि है, मिथ्यात्व को शुरुआत है, यानी उसका अर्थ क्या हुआ? उसके पहले अन्य कुछ था, यानी अन्य कुछ था यानी सम्यक्त्व था, और सम्यक्त्व में से फिर दोबारा मिथ्यात्व में आया। तो अभी जो उसका मिथ्यात्व चल रहा है उसको स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है ना। जब सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में आया है तभी से, मान लो कोई 10 साल पहले आया, तब उसको इस मिथ्यात्व को स्टार्टिंग है, आदि है, तो उसको हम सादी मिथ्या दृष्टि कहेंगे। तो अनादि मिथ्या दृष्टि ने अनादि से आज तक जिसने सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया वो अनादि मिथ्या दृष्टि। और सादी मिथ्या दृष्टि का अर्थ होता है पहले सम्यक्त्व प्राप्त किया है और छूट कर जो मिथ्यात्व में आता है उसको कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। अब इसको फिर पढ़ते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सबसे पहले सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तब वह औक्षमिक सम्यक्त्व ही होता ही लगाया। जिसने आज तक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया है ऐसा जीव जब जब सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, जब कभी, जब जब यानी जब कभी करेगा, तो वो पहले में पहले औक्षमिक सम्यक्त्व ही प्राप्त करेगा, जिसको हम प्रथमोक्षम सम्यक्त्व यहाँ कह रहे हैं। अरे कोई डायरेक्ट क्षोक्षम सम्यक्त्व हो जाए या मिथ्यात्व में से क्षायिक समय दृष्टि हो जाए ऐसा कभी बनेगा ही नहीं। तो नियम से कौन सा होगा? ये औक्षमिक समय दृष्टि होगा। और जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है वो भी लगाए कर्मों का उपशम करके सम्यक्त्व तो प्राप्त कर सकता है, यानी उसके लिए दो ऑप्शन है। सादी मिथ्या दृष्टि के लिए दो ऑप्शन है, कौन से? वो कर्मों का उपशम करके सम्यक् दृष्टि हो सकता है, या कर्मों का क्षोक्षम करके क्षोक्षम सम्यक् दृष्टि हो सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि तो औक्षमिक सम्यक् दर्शन प्राप्त करके प्रथमोक्षम सम्यक् को धारण करेगा, बराबर, यानी उसको औक्षमिक सम्यक् को ही होगा ही लगाया। जो सादी मिथ्या दृष्टि है, सादी का अर्थ क्या है? एक बार सम्यक् को प्राप्त किया है तो उसकी सत्ता में अभी दर्शन होने की तीन प्रकृतियां, मिथ्यात्व सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति, उसके साथ अनंत आनंद होनी भी होती है, वो कैसा उपशम करता है उसकी बात बाद में करेंगे। तो इनका अभी वो क्षोभसम करके जब समय को प्राप्त करेगा, जो सादी मिथ्या दृष्टि है वो कर्मों का क्षोभसम करके समय को होगा, तो उसको हम क्षोभसम समय दृष्टि कहेंगे। या वो कर्मों का उपशम करके भी समय को हो सकता है, तो फिर हम उसको प्रथम उपशम समय दृष्टि कहेंगे। पहले क्या कहा, अनादि मिथ्या दृष्टि को समय को होगा तो कैसा होगा, औक्षमिक समय, और सादी मिथ्या दृष्टि का होगा तो क्षोक्षमिक भी हो सकता है औक्षमिक भी हो सकता है। तो क्षोक्षम कब होगा औक्षमिक कब होगा उसका भी निश्चित है, तो उसकी चर्चा तो बाद में होगी, जब ये पहले उपशम समय को क्या ये समझ में आ जाएगा तो वो किस तरह से हो सकता है उसकी चर्चा हम भविष्य में करेंगे। तो इस तरह से सादी मिथ्या दृष्टि जीव दोनों ही प्रकार से समय को प्राप्त कर सकता है। इन दोनों ही प्रकार से जब विशिष्ट कर्मों का उपशम करके, अभी हमने कर्म कौन से उसकी बात नहीं की, अभी हम खाली प्रोसेस बता रहे हैं कि विशिष्ट कर्मों का उपशम करके मिथ्या दृष्टि जीव समय को प्राप्त करता है तब उसे प्रथम उपशम समय को कहते हैं। अब ये कौन से कर्म है, कौन सा जीव इसको करने में योग्य है, प्राप्त यानी लायक है, उसकी बात अभी हम करेंगे। सादी और अनादि का अर्थ याद है ना, स प्लस आदि इज इक्वल टू सादी और अन प्लस आदि इज इक्वल टू अनादि। जिस जीव ने अनादि काल से कभी समय को प्राप्त किया नहीं है और जो अनादि काल से मिथ्यात्व अवस्था में ही है उसे अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं, और जो जीव समय को प्राप्त करने के बाद दोबारा अतत्व श्रद्धा से मिथ्या दृष्टि होता है उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये स्वयं अतत्व श्रद्धा करता है, स्वयं अपनी योग्यता से समय को प्राप्त किया था, अब स्वयं अपने पुरुषार्थ से मिथ्या की होता है। कैसा उल्टा पुरुषार्थ, पहले तत्व श्रद्धा किया था अब यह तत्व श्रद्धा कर दिया उसने, तो वो फिर दोबारा मिथ्यात्व में आ गया। अब कौन से कर्मों का उपशम करके जीव समय को प्राप्त करता है उसे देखते हैं। अब जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके पास दर्शन होने की कितनी प्रवृत्तियां हैं, एक कौन सी मिथ्यात्व, क्योंकि जो बंध होता है दर्शन होने का तो एकमात्र मिथ्यात्व कर्म का ही बंध है। बंधने योग्य एक ही प्रकृति है, दर्शन होने की बंधने योग्य प्रकृति एक, उसका नाम है मिथ्यात्व। तो अनादि मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन होने कर्म की एक मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में होती है, क्योंकि वो हर समय अभी तक बांधता आया है, अनादि से हर समय मिथ्यात्व बांधता आया, कभी थोड़ा बांधा कभी अधिक बांधा, परंतु तो मिथ्यात्व का तो और उसकी ये निषेध रचना हर समय में होती है। अधिक से अधिक तीव्र मिथ्यात्व बांधेगा अधिक स्थिति वाला तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बांधेगा, और कितना भी कम बांधा तो भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर का बांधेगा। ये पंचेंद्रिय की बात करें, वैसे एक इंद्रिय में चला जाता है तो एक सागर का बांधता है, तो 70 कोड़ा कोड़ी का बांधना अच्छा कि एक सागर का बांधना अच्छा, एक कितनी स्थिति बांधनी उससे कुछ नहीं, जो निगोद में पड़ा है एक इंद्रिय जो जीव है वो तो एक एक सागर का ही बंध करते हैं, और संगी पंचेंद्रिय स्याना हुआ ना तो वो तो 70 कोड़ा कोड़ी का बांधते, उसका मिथ्या तो भी इतना तीव्र हो जाता है। एक इंद्रियों में मंद था, अभी संगी पंचेंद्रियों में मन द्वारा विचार करने लगा तो और नए नए कल्पनाएं सोचता है, मिथ्यात्व के नए नए फैशन सोचता है। आपको नहीं मालूम मिथ्यात्व के फैशन नहीं है, आपके यहाँ नहीं चलते, जैसे ये कपड़ों के फैशन चलते हैं ना ड्रेसेस, वैसे मिथ्यात्व के भी फैशन चलते रहे। ये वास्तुशास्त्र है, ये ऐसा दीवार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करो इसको पाट दो या ऐसा करो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे घर में संकट आते हैं ना तो घर की रचना बदल दो तो तुम्हारे संकट टल जाएगा, ये अभी नया मिथ्यात्व चल रहा है, ये फैशन चलते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि हम उसके कपड़े में आ रहे, बहुत बातें चलती है इसे। हाँ फुंग श्री शोई फुंग क्या क्या चलता है, फुंग श्री हमको मालूम नहीं नाम क्या चलते, तो ऐसा कुछ घर में लपेट लो तो क्या होगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, हम भी इतने भोले हैं कि उस पर विश्वास कर देते। यहाँ तो शास्त्र में सुनते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, और वहाँ जाकर वो तो घर में जाके क्या है, भूलते हैं ना, याद नहीं रहता, इसलिए ये तो बहुत बातें चलती। क्योंकि ये जो है हम शास्त्र में जो पढ़ते हैं वो पूरे इसका एप्लीकेशन तो पूरे 24 घंटे करना है। वो एप्लीकेशन ये तो यहीं की बात हम यहीं छोड़ते, हम किसी की बात घर में नहीं ले जाते। तो ये तो बातें हमारे जो लौकिक जो चल रहे हैं, हमारे आचार है विचार है उसमें चले, भले जो जो कुछ बातें बनती है उसमें, मगर विचारों में तो लेना नहीं, ये तत्वों को तो विचारों में लेना, ज्ञान में लेना है। मगर हम तो ये तो लौकिक, क्योंकि ये क्या हम क्या जो जो घर की रचना करके क्या करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते, क्या हासिल करेंगे, धन संपत्ति पर चीजें, और ये हासिल होती या नहीं होती कुछ पता नहीं। ये तो जीव के अगर निमित्त ही बनना है तो ये तो उसका साता असाता आदि पुण्य पाप प्रकृतियां पड़ी है ना, निमित्त को ढूंढना है। तो बाकी जो रचनाएं होनी है, पैसा आना है जाना है, लौकिक जो कुछ घर की रचना होनी है वो पुद्गलों की रचना है, उससे अपना कुछ लेना देना नहीं है। पर ये मेरा है ऐसा जो जिसके साथ निमित्त नैमित्तिक पना बनेगा उसके भी वो कर्म के रिलेटिव से, हमारे कुछ नहीं है। क्या औरंगाबाद में हमारे ये लड़की तो है ही, हमारी भाई साहब की लड़की है, तो उनके उसने किस्सा बताया था कि वहाँ एक कोई फैमिली है और ये वास्तुशास्त्र के रचना अनुसार, वो बहुत सुना था कि वास्तुशास्त्र के घर ऐसा ऐसा बांधना चाहिए, तो उसने सोचा चलो ये भी जो घर है उसको पारने के बाद दूसरा नया ही घर बनाए। जो वास्तुशास्त्र में जितना जैसा बनाया बिल्कुल एक एक ईंट उसके अनुसार बताई उसने बनाई, पूरा घर तैयार हुआ। और उसके फैमिली में जो कुछ 8-10 मेंबर होते थे कहीं गए थे यात्रा में, तो आते आते सबका एक्सीडेंट होकर सब एक साथ खलास हो गए और ये अकेला रह गया। तो वास्तुशास्त्र ने क्या किया उसके लिए, और जब तक किसी ने बताया नहीं ये दीवार तोड़ना ही चाहिए, तब तक घर में जो कुछ बने, किसी को कुछ लग गए चाकू लग गए, किसी को फ्रैक्चर हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, हाँ ये उसने बताया था और हमने नहीं किया ना, ये इसलिए ऐसा होता है। डर के मारे लोग इसके पीछे आते, हम जाते हैं कहीं कहीं वो तो प्रवचन प्रवेशन में जाते हैं, कभी हमारे ही जो मूल दिगंबरों में कहीं कहीं अभी माता रखते घर में, भवानी रखते, क्या क्या रखते, अभी क्यों इसको क्यों नहीं निकालना, गौरी पूजना वगैरह बहुत बातें चलती है, तो क्यों नहीं निकालना, हमारे बाप जाते करते आए ना, अब हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को कुछ हो जाए, तो वो जीव डरता है उसमें, और वही मिथ्या मान्यता चलती रहती है। ये तो मिथ्या मान्यता, और नए पढ़ाने वाले भी होते नहीं, ये आगू किए इसकी इस देवता की पूजा करो तो आपका भला हो जाएगा, चलो उसके पीछे लग जाए, अभी उसकी बातें कितने गहरे, अपना विषय भूल रह जाएगा। देखो अभी हम आते हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि के पास, ये मैं 58 पेज पर ये पहला ही बड़ा पैराग्राफ कर रही हूँ, गुजराती में देख लू भाई। हाँ अनादि मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन भूमि कर्म के एक मिथ्यात् प्रकृति सत्ता में है, क्योंकि बंध एक मिथ्यात् प्रकृति का होता है। जब सादि मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन होने की तीन प्रकृति है, समिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, वो टुकड़े तो तीन हो जाते हैं और फिर जीव मिथ्यात्व में आया, तो कुछ काल तक ये तीनों टुकड़े बने रहते, नया बंध तो मिथ्यात्व का होता ही रहेगा, फिर भी ये तीन टुकड़े असंख्यात वर्षों तक बने रहेंगे मिथ्या दृष्टि अवस्था में। क्योंकि पहली बार प्रथमोक्षम समय तो होने पर मिथ्यात्व के तीन टुकड़े होते हैं, जो जीव पहले गुणस्थान से यानी मिथ्यात्व गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जाता है, अब ये कौन कौन से कर्मों का उपशम करता है उसकी बात आएगी। तो दर्शन भूमि और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, यानी दर्शन होने की एक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इस तरह से ये पांच, इन पांच प्रकृतियों का उपशम करते हैं। वहां अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार, इस प्रकार पांच प्रकृति का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है। शास्त्र में उसकी डेफिनेशन आती है कि मिथ्या दृष्टि तात्पर्य यह है कि जब जब जीव ऊपर बताए हुए कर्मों का उपशम करके मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, तब तक उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहेंगे। क्षोक्षम करके सम्यक्ति होगा तो उसको क्षोक्षम सम्यक् दृष्टि कहेंगे, तो यहां हमारी बात प्रथमोपशम की चल रही है। जब जब मिथ्यात्व अवस्था में से कोई जीव इन कर्मों का उपशम करके सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, तब तक उसको प्रथम ऑप्शन सम्यक तो कहेंगे। हालांकि पहली बार सम्यक तो हुआ इसलिए उसे प्रथम ऑप्शन सम्यक तो नहीं कहते, परंतु जब जब कोई जीव मिथ्या दृष्टि जीव औषधिक सम्यक तो प्राप्त करेगा, तब तक उसको प्रथम ऑप्शन सम्यक तो कहते। कंडीशन क्या है? मिथ्या दृष्टि जीव जब जब औषधिक सम्यक तो प्राप्त करता है, तब तक उसको प्रथम ऑप्शन कहते, भले वह पहली बार हो, दूसरी बार हो या असंख्यात बार हो। क्यों अचेत में क्यों पड़ी है? हमें प्रश्न है ना, अरे बाप रे असंख्यात बार मिथ्या तो नहीं, सम्यक तो नहीं मिथ्या तो। तुम इस भ्रम में मत रहना कि एक बार सम्यक तो प्राप्त कर लिया तो हमारा काम हो गया। किसी जीव को सम्यक तो होकर छूट गया तो अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वह मिथ्यात्व में भटक सकता है। पॉसिबिलिटी बताई, सम्यक तो प्राप्त कर लिया, मिथ्यात्व में गया और फिर दोबारा सम्यक तो नहीं प्राप्त करेगा, कितने काल तक भटेगा? तो अर्ध पुद्गल परावर्तन, परावर्तन की बात यहाँ हो गई थी ना, द्रव्य परावर्तन की। तो एक द्रव्य परावर्तन भी अनंत काल है और उसका आधा काल भी अनंत है, उसमें भी अनंत सागर वर्ष इतने चले जाते हैं। तो इतने लंबे काल तक वो मिथ्या तो नहीं रहेगा, तो उससे अधिक नहीं रहेगा। उतने काल के बाद उसको सम्यक तो भी होगा, मुनि भी होगा, वो मोक्ष भी चला जाएगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन अधिक से अधिक उसका भटकने का काल, यानी अभी उसका संसार का किनारा नजदीक आ गया है, फिर नजदीक, अभी अनंत काल बाकी है, फिर भी अभी वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड हो गया तो उसको कहेंगे अभी वो निकट हो गया कहेंगे। यह अनंत काल है, तत्व श्रद्धा में हुआ, आत्मा का अनुभव किया तो वह छूटकर जीव दोबारा मिथ्यात्व में जा सकता है। हाँ, द्रव्यान योग में और उपदेश की मुख्यता में जहाँ पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जाती है वहां गिरने की बात नहीं करते। स्वामी जी के प्रवचन में बहुत बात सुना है, ये गिरने की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो पुरुषार्थ की मुख्यता है ना, जिनको समय तो प्राप्त करना, ये तो तू केवल ज्ञान स्वभाव के गिरने का क्यों बात कर। जो नया व्यापार करना चालू करता है तो क्या वो दिवाली की बात निकाली है? क्यों? हाँ, शादी कर दो समय निर्वाह की बात, अरे मुझे कौन पहले मरेगा, इसी बात नहीं करते। तो जो सम्यक्त्व का पुरुषार्थ कर रहा है, सम्यक्त्व का पुरुषार्थ मैंने आत्मा, अपने आत्मा को पहचानने की बात जान रहा है, मैं गिर जाऊ तो ऐसे पढ़ने वाली बात मत करना, ऐसे कहते हैं। क्योंकि वहां पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हैं, परंतु यहाँ तो करना नहीं होगा। एक भी जीव गिरता है तो यहाँ बताई जाएंगी कि जीव को गिरने के चांसेस है, मेडिकल के बुक्स होते हैं तो उसमें तो नॉर्मल तो सब बता ही जाते हैं, तो एक लाखों में 10 लाख में भी एक कोई बीमारी होती है तो वहाँ वो लिखेंगे कि ये बीमारी हो सकती है, तो वो बीमारी का पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा वहाँ, जिसको रेयर केस कहते हैं। बताएंगे हर एक को तो बीमारी नहीं होती, लाखों में एक को होती है तो भी वो बताएंगे। वैसे करना नहीं हो क्या बताएगा, ये तो अनंत जीवों में एक भी जीव गिर गया तो बताएगा कि ये इस तरह से अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकता है जी, क्योंकि ये केवल यानी नहीं जानी हुई बातें। तो द्रव्यान योग में और जहां उद्देश्य की मुख्यता है वहां तो पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जाती है, वहां गिरने की बात नहीं करते, परंतु यहां तो कर्णानि योग में वस्तु स्थिति बताई जाती है। ये बातें केवली गम्य है, एक भी जीव में यदि इतनी बार संबंध से गिरना होता है तो वह बात कर्णानि योग जरूर बताएगा। यह पढ़कर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले में पहले कर्म की बातें आती है तो बहुत लोग कहते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, अभी तक हम कुछ नहीं जानते थे हा? तो अच्छा था, अब जब कर्म की बात यानी अज्ञान में सुख था, इग्नोरेंस इज ब्लिस यानी अज्ञान में सुख था, क्योंकि हम नहीं जानते तो अच्छा था, अब कर्म की इतनी बातें बताकर आपने हमको डरा दिया। परावर्तन की बात आती है ना, इतने बार हमने अनंत के बार ये द्रव्य परावर्तन क्षेत्र ये पांचों परावर्तन किए हैं, ये बातें सुनते हैं लोग तो रोने लगते हैं, प्रवचनों में सोलापुर में मैंने लिए थे, वर्धा में लिए थे, और भी हमारे यहाँ भी हम बहुत बार होता है पंच परावर्तन का विषय लेते हैं तो कितने ही श्रोता तो रोने लगते, इतना डर लगता है अंदर से, अरे हम कहाँ कितना अनादि का काल लेने, खाली अनादि बताते तो उसमें कुछ उसका एहसास नहीं होता, परंतु अनादि यानी कितना काल गया है उसका थोड़ा सा नमूना यानी ये पंच परावर्तन है, उसका स्वरूप समझ में आता है तो अंदर से ऐसा होता है कि अरे बाप रे इतना काल हमने भटक भटक कर जन्म मरण किए है और अभी तक हम चेते नहीं है, सुबह नहीं है, तो ऐसे ही परावर्तन हमारे अनंत और बाकी होते रहे। इसमें से छूटने का एकमात्र जो उपाय है वो सम्यक तो प्राप्त करेगा तो अभी सारे परावर्तन छूट जाएंगे, अर्धपुद्गल परावर्तन में जीव नियम से मोक्ष पहुंच जाएगा, यानी मोक्ष प्रकट गया, पहुंचना है कहीं अन्यत्र पहुंचना नहीं है, ये यहाँ की बात है, अपनी पर्याय की बात है। तो यह पढ़कर डरने की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार सम्यक तो होने पर भूल जाने की भी जरूरत नहीं है, दोनों तरह से है ना उसका, क्योंकि मान हो जाए तो नियम से गिरने वाला है, कोई कहेगा ऐसी गिरने की संभावना है तो हम सम्यक का पुरुषार्थ ही नहीं कहेंगे, तो उसे समझाते हैं कि एक बार सम्यक हुआ तो अल्प काल में तू मुक्त होगा ही, अब तू चाहेगा तो भी अधिक काल संसार में भटक नहीं सकता, तो पहले सोच ले। यदि सम्यक प्राप्त होने पर किसी के मत हो जाए, अभिमान कर लगे करने लगे तो पर्याय में अनुभूति के कारण भ्रष्ट होकर वह मिथ्यात्व में आ जाएगा, तो ऐसे जीव को समझाते हैं कि पल्ले के असंख्यात भाग बार, ये पल्ले के असंख्यात भाग यानी वो भी एक असंख्यात संख्या है, यानी असंख्यात बार जीव मिथ्यात्व से सम्यत्व में और सम्यत्व से मिथ्यात्व में जा सकता है, इसलिए अपने परिणामों की संभाल रखना दृढ़ श्रद्धा नहीं होना, बोलो हम तो अभी समय दृष्टि हो गई, अभी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, चलो जाके अभी टीवी के सामने बैठ जाएंगे, तो ये ऐसा उसका लक्षण ही नहीं होगा समय दृष्टि का, है ना, तो ये परिणामों की उद्देश्य जो है वो ऊंचा चढ़ने के लिए होता है, इसलिए जो जैसा जीव है सामने का उसका वैसे उसको उपदेश दिया जाता है। अब ये जो हमने सम्यक्त्व के जो प्रकार देखे थे औक्षणिक क्षौक्षणिक और क्षय उसकी बात करें, सम्यक्त्व तीन प्रकार है, औक्षणिक या उक्षम सम्यक्त्व, क्षौक्षणिक या क्षौक्षम अथवा वेदक सम्यक्त्व, उसी का नाम है, वेदक सम्यक्त्व कहो क्षौक्षणिक कहो या क्षौक्षम भी कहते उसको शॉर्ट में, या क्षायिक सम्यक्त्व, यानी यह तीन, तीसरा जो है क्षायिक सम्यक्त्व, पहला कौन सा रहेगा हमने ऑप्शन, दूसरा क्षय ऑप्शन और तीसरा क्षय। कर्मों की क्या अवस्था है सामने उसके ऊपर सम्यक्त्व को ये तीन अलग अलग नाम दिए, दर्शन भूमि और अनंतानुबंधी कर्म के उपशम क्षयोपशम और क्षय होने पर अनुक्रम से लिए। तो हम एक एक को लेते हैं, दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी कर्म का उपशम होने पर जीव में जो अवस्था पाई जाती है उसको औपशमिक समय को कहेंगे, बराबर। अब दूसरा लेना, दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी कर्म का क्षयोपशम होने पर जीव में जो अवस्था पाई जाती है उसको क्षयोपशमिक समय को कहेंगे, और दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी कर्म का क्षय होने पर, क्षय का अर्थ होता है सत्ता में से पूर्णतः नाश होना, सत्ता में वो बिल्कुल रहना ही नहीं, ये पहले तो सत्ता में पड़े थे, सत्ता में पड़े पड़े उपशमित हो जाए, उदय नहीं आवे, तो उसको कहेंगे उपशमित समय को, सत्ता में तो है परंतु उदय नहीं आ रहे। क्षयोपशमित कब कहेंगे, तो हमने जो सात प्रकृति देखी थी ना, तीन और चार, उसमें से उदय तो सम्यक प्रकृति का होगा और बाकी सारे भविष्य में पड़े रहेंगे, नहीं समझे। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सत्ता में तो पड़े रहेंगे परंतु वो उदय नहीं आएंगे, और उदय होगा सम्यक प्रकृति का, और अनंतानुबंधी का भी उस रूप उदय में नहीं आएगा। अन्य जो चारित्र मोहनी है और प्रत्यकांत प्रत्यकांत संगलन उस रूप उदय में आएगा, ऐसी जब कंडीशन होगी तब हम उसको कहेंगे क्षयोपशमिक समय। और क्षायिक समय को कब कहेंगे, सत्ता में कोई भी अभी निषेक नहीं रहा, ना मिथ्यात्व का, ना सम्यक मिथ्यात्व का, ना सम्यक प्रकृति का, और ना ही अनंतानुबंधी का। ऐसी जब अवस्था हो जाएगी यानी सत्ता में से जो समूल नाश हो जाएगा तब उसको कहेंगे हम क्षायिक समय, यानी ऐसे जीव को दोबारा अतत्व श्रद्धा होने का कोई चांस ही नहीं है। शायद सम्यक होगी ना, अभी उसका जो सम्यक है वो सिद्ध अवस्था तक तो बना ही रहेगा, यानी हमेशा अनंत काल तक हो रहे उसको कहते हैं शायद सम्यक। उपशम के समय इन कर्मों के उदय का अभाव पाया जाता है। देखो द्रव्यान योग तो हम ऐसा कह देते हैं कि उसका अभाव हो गया, तो द्रव्यान युग में क्योंकि स्थूल कथन होता है और करणान युग में विशिष्ट अवस्था बताई जाती है, तो द्रव्यान युग में हम कहते हैं दर्शन होने का अभाव हुआ यानी मिथ्यात्व का अभाव हुआ और सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, परंतु यहाँ उपशम हुआ यानी क्या है, उदय का अभाव हुआ, क्योंकि जहाँ उदय है वहां जीव के भी वहां वैसा परिणाम भी है, तभी तो वहां उदय है। जीव का मिथ्यात्व परिणाम है तो सामने कर्मों में भी मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, कर्म तो बताने वाला है यहाँ क्या है, आईने में सामने जैसा प्रतिबिंब है तो दिखता है कि वहां ऐसा चेहरा है उसके ऊपर यहाँ काला दाग है, तो काला दाग है तो हम क्या निर्णय क्या कहते हैं, हम वहां नहीं पहुंचते तो यहाँ इसका निर्णय करते, बराबर। वैसे कर्म में मिथ्यात्व है ऐसा उदय है चल रहा है, वो क्या बता रहा है कि यहाँ जीव का मिथ्यात्व परिणाम चल रहा है, उसने नहीं कराया, ये बात हमारे ख्याल में नहीं आती, ये निमित्ताधीन दृष्टि ऐसी बनी है कि कर्म का उदय है तो जीव को वैसा भाव करना पड़ता है, ऐसी मान्यता चलती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो हमारा वो तो थर्मोमीटर है जो उदय चल रहा है उसकी तरफ देखकर यहाँ जीव के परिणामों को नापा जा सकता है, एक ही समय में दोनों बातें होती है। तो यहाँ जो चल रहे हैं तो उपशम के समय क्या होता है, इन कर्मों के उदय का अभाव पाया जाता है, कौन से कर्मों के, दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, अन्य कर्मों की बात नहीं है, अन्य 148 प्रकृतियों की बात नहीं है, दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी छोड़कर अन्य जो ज्ञानारण दर्शनारण वगैरह जो बातें कर्म है उनका यथा योग्य उदय चल रहा है, यह किसके उदय का अभाव हुआ है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय का अभाव चल रहा है ना। तो इन कर्मों का लिखा, इन कर्मों के उदय का अभाव पाया जाता है। कर्म सत्ता में तो पड़े रहते हैं, परंतु अंतर मुहूर्त काल तक दबे रहते हैं। ये जो उपशम होना है वो अनलिमिटेड काल के लिए नहीं हो सकता। उपशमित किए ने अभी उदय में नहीं आएंगे, अंदर सत्ता में पड़े रहेंगे, तो ऐसा अधिक से अधिक कितने काल तक हो सकता है? तो एक अंतर मुहूर्त, अधिक नहीं। उपशम की ये लिमिट है कि उपशम सम्यक तो करेगा तो ये एक अंतर मुहूर्त तक उसको उपशमित कर सके। तो ये जो एक अंतर मुहूर्त काल तक दबे रहते हैं, उदय में नहीं आते, यानी उदय में नहीं आना, सत्ता में पड़े रहना, उसको कहेंगे यह उपशम। शोक्षण सम्यक्त्व में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार, इन छह का उपशम रहता है, यानी वो छह उदय में नहीं आते। और उदय किसका रहेगा? सम्यक प्रकृति का उदय। तब उसको हम कहते हैं कि देशघाती प्रकृति होने के कारण सम्यक्त्व का तो भाव नहीं करते, सम्यक प्रकृति जो है उसका उदय भी होता रहे और सम्यक्त्व भी चालू रहे, उसमें कोई बाधा नहीं। क्यों? हमने देखा था वो कौन सी है, सर्वघाती के देशघाती, देशघाती प्रकृति है तो वो सम्यक्त्व का घात नहीं करती, उसका उदय भी हो और सम्यक्त्व भी चलता रहे, ये हो सकता। अब कोई सादी मिथ्यादृष्टि जीव पहले गुणस्थान में से शोक्षम सम्यक्त्व प्राप्त करके चौथे में जा सकता है। पहले हमने बात की थी सादी मिथ्यादृष्टि ने, एक बार जिसने सम्यक्त्व प्राप्त किया है और फिर वो मिथ्यात्व में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं सादी मिथ्यादृष्टि। अब उसके सत्ता में दर्शन होने की तीन प्रकृति होती है और अनंतानुबंधी की चार, इनका उदय चल रहा है। अब ऐसा जीव डायरेक्ट पहले में से सम्यक्त्व प्राप्त करके कौन सा क्षोभषम सम्यक्त्व प्राप्त करके चौथे में जा सकता है? तो क्षोभषम सम्यक्त्व यानी क्या करेगा? तो सम्यक यानी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व दो और अनंतानुबंधी चार, इस छह का तो उपशम होगा, यानी उस रूप उदय में नहीं आएगा और उदय चलेगा सम्यक प्रकृति का। ऐसी जब अवस्था होती है तो हम कहेंगे सादी मिथ्यादृष्टि जी कर्मों का शोषण करके शोषण सम्यक दृष्टि हो गया है ना। तो यानी जो सारी मिथ्या दृष्टि है उसके लिए दो रास्ते हैं, शोषण समय को प्राप्त करना या औक्षमिक समय को प्राप्त करना। तो सारी मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुणस्थान में से शोषण समय को प्राप्त करके चौथे में जा सकता है, या कोई उपशम समय को पूर्वक शोषण समय को प्राप्त कर सकता है। देखो एक शोषण समय को जो प्राप्त करता है वो कौन सा जीव करेगा? या मिथ्या दृष्टि समय तो प्राप्त करेगा, शोषण सम्यक्त्व की बात हो रही है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव जो सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तो या तो कर्मों का शोषण करके मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, या शोषण सम्यक्त्व और किसको हो सकेगा? तो जो औक्षमिक सम्यक्त्व दृष्टि जीव है जिसने सातों ही का उपशम किया था उसके बाद वो मिथ्यात्व में जावे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होगा उसका? सात का उपशम किया था उसमें से छह का उपशम रहेगा और एक का उदय होगा सम्यक प्रकृति का, तो वो उपशम सम्यक्त्व में से क्षोभषम सम्यक दृष्टि होगा। तो जब क्षोभषम सम्यक्त्व होता है या तो मिथ्यात्व सादी मिथ्यात्व में से क्षोभषम सम्यक्त्व होगा या औक्षमिक सम्यक्त्व में से शोषण सम्यक्त्व। ये ख्याल में आती बात, शोषण में से उपशम नहीं होगा कभी, वो कब होगा? द्वितीय उपशम सम्यक्त्व में होगा। शोषण में से उपशम कब होता है? श्रेणी चढ़ने के सब उपशम श्रेणी चढ़ने वाला है तो सम्यक प्रकृति के उदय सहित नहीं चढ़ता, श्रेणी चर्चा है। तो ये दर्शन होने की जो सम्यक प्रकृति है वो देशघाती है, सम्यक्त्व में तो बाधा नहीं लाती, परंतु उसके उदय में श्रेणी चढ़ने का जो अत्यंत विशुद्ध परिणाम है वो हो नहीं सकता। तब जीव क्या करता है? तो दोबारा ये उसका उपशम करता है। एक अंतर्मुख के लिए वो सभी प्रकृतियां दबी रहती है, उनका उदय भी नहीं होगा। और बाद में चारित्र मोहिनी में भी उपशम करते करते वो चढ़ेगा, वो विषय अलग है, तो उसको कहेंगे द्वितीयोपशम। देखो इनका प्रश्न ऐसा है, क्षोपक्षम में से कोई छूटकर मिथ्यात्व में आवे तो वापिस वो उपशम कर सकता है क्या? कर सकता है, परंतु मैं जरा समझाती ये विषय भी, यहाँ थोड़ी समझेंगे फिर दोबारा और बाद में भी समझेंगे। जब सम्यक तो होता है उसके पहले ही प्यार के लकड़ी से ही अंतर थोड़ा थोड़ी सागर से गिर हो जाता है। तभी समझ क्या नाम रचना कभी प्रश्न कर प्रश्न करें। अब जब उपशम समय को प्राप्त करता है तो मिथ्या तो मुझे तीन टुकड़े होते हैं, अन्य समय की हम बातें नहीं कर रहे, मिथ्या जो थे तीन टुकड़े होते। अब ये जो तीन टुकड़े हैं उन तीन टुकड़े अंतर थोड़ा थोड़ी सागर, और ऐसा चीज समय को दिन से मिथ्या को नहीं आता। अब मिथ्या को नहीं आने पर क्या होगा? अब ये नया रोगी चिंता को बात करेगा, ये तो पूर्व सरकार में बना है, और ये उनका नया अनेक गुराव के चरण में पर। अब ऐसा जो नीति को पढ़ ली थी समय और समय प्रवृत्ति तो ऐसी हुई नया मिथ्या को बनाने का उसके जो चर्चा में जितना नया मानी है जितने थोड़ा कोई सागर का उतना लोग होता रहेगा। और ऐसा जी दोबारा जब संबंध प्राप्त करेगा तो अभी ये मुझे समझना है इन दो संबंध वो अंतर दबा को लाग रही है। और यहाँ से जो इतना काम है या जिनका प्रश्नों का कारण है, अब जो चीज मिथ्या को ये दोबारा समय को प्राप्त करेगा, अब इतने बाद में अगर वो समय को प्राप्त करेगा तो नियम से शौचम समय को ही होगा, इतने असंख्या वर्षों तक वो दोबारा प्रथम अंशम समय को प्राप्त नहीं कर सकता। शौचम समय को प्राप्त कर सकता है एक ही काम में, यानी बहुत बार मिथ्या के समय को समय पर मिलने मिथ्या तो हो सकता है, परंतु जब तक हिंदी की एक सागर दिन में नहीं ले जाए तब तक वो उसका दोबारा उपशम नहीं कर सकता। इतनी अधिक स्थिति वाले कर्मों का एक साथ संपर्क नियम का उपशम नहीं हो सकता, तो इसको कहते हैं वेदक योग के साथ। इतना जो काम है इसको कहते वेदक योग्य, इतने काल में वो समय को प्राप्त करेगा तो क्षोषण समय को ही होगा, औषधि समय को नहीं होगा। और इतना काल बीत गया और अभी इतनी परिस्थिति में एक सागर में कम है जिसका मुद्दा अगर एक बार नहीं है। अब इतना बड़ा बाकी है तो अभी इसका वो उपशम कर सकता है। यदि मिथ्या तो नहीं हुए तो क्या होता है? ये दो प्रवृत्तियां जिनका भी मिथ्या को हो सकता इतने काम में उसको उठ सके, ये चंद्र में हो जाए उल्टा चंद्र मिथ्या समय मिथ्या और समय प्रकृति है एक सारे उपयोग रहती है तो उसका उल्टा संक्रमण करता है तो मिथ्या जो तरह हो जाए। और इतने काल यदि ये समय को प्राप्त करे तो ये तीनों में एक साथ उपशम करके वो औषण समय की हो सकता है। एक बार उपशम समय को प्राप्त करके दोबारा उपशम समय को प्राप्त करने के लिए बीच में असंख्यात वर्ष चल रहे असंख्यात वर्ष, क्योंकि असंख्यात वर्षों तक ये तीन टुकड़े बने रहते हैं। और जब ये तीन स्थिति बिल्कुल कम रहती है एक साल से कुछ कम काफी रहती है वो प्रथम में अलग अलग रहती है।
से गहरा कठिन हो जाता है तो वो समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने कहा कि बहुत समय लेता है, एक सालों के आसपास उसका निश्चित है। ये काफी मैं आगे यहाँ करता नहीं ये जिसमें मैंने बताया तो ये बहुत कम स्थिति रहती है, तब जाके इसका दोबारा उपशम होता है। तो इसके लिए उपशम योग्य का यहाँ के नाम पर वेदक योग्य काल का उस काल में सोक्षम समय दर्शन दोबारा हो सकता है, उस काल में दोबारा प्रतिपक्षम समय का नहीं होगा। मैंने प्रथमोक्षण समय तो बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो सकता, एक बार होकर छूटा तो अर्थान वर्षों के बाद दोबारा दूसरी बार प्रथमोक्षण की बात समय तो वो नहीं होगा, ऐसी मैं बात नहीं करें दोबारा औक्षणिक समय में उसको इतनी जल्दी नहीं होगा। तो गिर गया, मान लो प्रथमोक्षण समय को प्रभाव किया और गिर कर हिंसा नहीं हो गया तो एक भी अनुबंधन है शोषण संबंधों का फिर गिर गया, फिर एक अंदरमन में कर सकता है। यानी अनेक बार इतने कार्य वो अनेक बार शोषण समय दर्शन के विचार को विचार दर्शन शोषण समय दृष्टि हो सकता है। बात वो जानते समय विचार में आता है ना व्यवहार की वो संदाजी में वहां तो शोषण उपक्षम ऐसा लिखा था, मैंने उपक्षम एक उपक्षम पर नहीं बताया, मैंने वो शोषण के लिए उपक्षम की बात की है। तो इतने बातों को बार बार शोषण समझो मिलता रहे उसका चलता नहीं हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बताए। हर एक युग गिरता है, हर एक युग का ऐसी बात नहीं है, अधिक से अधिक होगा तो और वहां है यह उसको दोबारा प्रतिमोक्षण समझो हो सकता है। और इतने कारण से उसको नहीं हुआ तो ये दो प्रकृति चिंता दूर हो जाती है और वो अनादि चिंता दृष्टि जैसा बन जाए कि उसकी सत्ता में चिंता जो प्रकृति बाकी रहता है। हाँ ज्यादा होता है क्योंकि जब तक मिथ्यात्व में है तब मिथ्यात्व का नया बंध कर रहे हैं ना, तो वो अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों का हो, परंतु जब वो फिर दोबारा प्रथम ऑप्शन समय को करने जाए तो फिर वो घटकर अंत कोड़ाकोड़ी सागर होता है, परंतु ये दो प्रकृति तो इतनी रहेगी। हाँ एक सागर जितनी हो या एक सागर से भी हीन हो जाएगी समय तो होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसकी हाँ जब उसकी ये दो प्रकृति भी मिट जाएगी, इतना भी नहीं लेगा, एक मिथ्या तो ही प्रकृति रह जाएगी, तब जब वो प्रथम उपशम समय तो करेगा तो पांच का उपशम करेगा, यानी वो अनादि जैसा बन गया ना, उसकी सत्ता में एक मिथ्या तो प्रकृति रहेगी। हाँ प्रथमोक्षम सम्यक की डेफिनेशन यही है कि जब जब मिथ्यात्व में से पांच या सात प्रकृतियों का उपशम करके जीव सम्यक प्राप्त करता है तब तब उसको हम प्रथमोक्षम सम्यक कहते हैं। यानी प्रथमोक्षम कहना किसे इसकी बात है। अब ये प्रथमोक्षम सम्यक प्राप्त किसे हो सकता है उसकी भी बात है ना, ये हमारा नंबर उसमें है कि नहीं वो दिखाई करना पड़ेगा। खाली शास्त्र की ऐसा होता है वैसा होता है कह के क्या फायदा है, ये अपना लाभ देखना चाहिए। हम सच्चे व्यापारी है ना, तो अपना लाभ कोई भी धंधा करते है तो अपना लाभ क्या उसको पहले अपनी उद्दृष्टि कहाँ होती है लाभ पर। तो ऐसे यहाँ हम इतना सारा सुबह से शाम तक इतना वो याद कर रहे, इतना आपको सुन रहे हैं, तो हमारा नंबर इसमें किस कहाँ आता है उसको भी देखना चाहिए। तो प्रथमोक्षम समय को कौन सा जीव प्राप्त कर सकता है, कौन सा प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी चर्चा अब हम शाम को करेंगे। बोलो पृथ्वीनाथ भगवान की।